गया किनारा, मिल गया किनारा साथ तुम्हारा प्रभु, इतना है प्यारा
नहीं। परमात्मा के ज्ञान और गुणों की वर्षा का आनंद लेना है ना, तो आपके ऊपर प्रकृति भी मेहरबान है, वो भी अच्छी वर्षा कर रही है और ऐसी वर्षा के चलते हमारे डॉक्टर साहब को आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, फिर भी पहुंच गए हैं है ना। तो हम हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का एक हाथ की ताली से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप पिछले 30 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से समर्पित हैं। आप ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं। हजारों पेशेंट को आपने राजयोग के अभ्यास से बिना हार्ट की सर्जरी के ठीक किया है। आपको अपनी इस विशेषता के कारण कई संस्थाओं ने और सरकार ने भी सम्मानित किया है। आपका सदा प्रसन्न चेहरा आपकी रूहानी पहचान है और आज का आपका विषय है सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता। तो आज हमको भ्राता जी अपने अनुभव से इस पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। सबसे पहले तो लेट आने के लिए मुझे माफ करेंगे, क्योंकि आज इतनी बारिश है, रास्ते में इतना ट्रैफिक है, मैंने कभी इतना ट्रैफिक देखा नहीं रास्ते में। नीचे जाने वाले भी ऊपर आने वाले भी बहुत थे और बरसात बहुत तेज। चलिए वो तो कोई बात नहीं, हमें प्रकृति जीत बनना ना सभी को। चलिए आज का विशेष टॉपिक है सदा बाप दादा के दिल तक नशीन सो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता। दोनों का आपस में क्या संबंध है? देखिए हमारा जो आपने लास्ट संडे की मूल्य में भी सुना, कल की मुरली में भी सुना और आज की मुरली में भी इसका इशारा है कि बाबा का दिल कितना बड़ा है। दिल कितना बड़ा है, बेहद। बाबा का दिल भी बेहद बड़ा है, मतलब बेहद है। बेहद मतलब इतना बेहद है कि उसपे सभी 800 करोड़ आत्माएं भी अगर उस पर आराम से रह सकती हैं ना। बाबा कहते हैं दिल तक मेरा इतना बड़ा है, इस पर आप सो भी सकते हो, खा भी सकते हो, सैर भी कर सकते हो ना, इतना बड़ा दिल तख्त है। पर क्वेश्चन आता, दिल कहते किसे हैं? दिल कहते किसे हैं? दिल क्या चीज है ना? दिल के बारे में बहुत सारी बातें हैं दुनिया में, तो सुनते ही हैं कि तो जो दुनिया में सुनते हैं और बाबा जिस दिल की बात करते हैं, क्या वो सेम है या कुछ और अलग है? एक तो फिजिकल दिल है ना हमारा, ये तो हमारा फिजिकल दिल है, पंप है जो गर्भ में ही धड़कना शुरू करता है और दिन रात नॉन स्टॉप धड़कता रहता है, नहीं धड़कता है, या कभी कभी बंद भी हो जाता है। हम 6 घंटे सोते हैं रोज रात को, और उसमें से अगर 2-3 मिनट बंद हो जाए तो क्या होगा? आत्मा छोड़ जाएगी, शरीर को छोड़ के भाग जाएगी ना। तो ये तो पंप है, वंडरफुल पंप है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा पंप कभी दुनिया में कहीं भी नहीं होता है ना, और जब तक हम जी रहे तब तक ये पंप काम करता रहता है। कि तो ये दिल तो एक फिजिकल बॉडी का दिल है। जिस दिल की हम शेरो शायरी में बात करते हैं, जिस दिल की हम कविताओं में बात करते हैं, जिस दिल की बाबा बात करते हैं, है ना, वो दिल कौन सा दिल है? वो दिल आत्मा का दिल है। और दिल क्या चीज है? आत्मा क्या है? शरीर क्या है? 5 मीटर का, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। कौन कौन से तत्व है? भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लगभग जल तत्व लगभग 70% है, 66-70% जल तत्व है। लगभग 4-5% वायु है ना, इस पर की थोड़ी ज्यादा ही है, और बाकी क्या है? भूमि, माना है जी, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो है, मतलब जो हमारे जो डिफरेंट जो मेटल्स है ना, 108 मेटल्स होती है ना, उनका बना हुआ है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सारी हमारी सेल्स बनी हुई, सब कुछ उसी से बना हुआ है। बाकी तो आकाश, स्पेस भी है, बीच में स्पेस भी है। हर मैटर जो है ना, हर जो जो हमारा जो भी टिश्यू बना हुआ है, मास बना हुआ है, वो सब किससे बना है? परमाणुओं से बना है। और परमाणुओं में क्या होता है? उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। उसमें भी सिर्फ 1% पार्ट न्यूट्रॉन उसका होता है, न्यूक्लियस का। 99% पार्ट खाली होता है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना। हालांकि देखने में ऐसी सॉलिड लगती है ना, ये भी सॉलिड लग रहा है, पर इसके साथ भी ऐसा ही है, जो एटम्स है ना एक साथ जुड़े हुए एक दूसरे साथ, तो उसमें भी 99% स्पेस खाली है ना। वो सिर्फ आपस में एक एक आकर्षण शक्ति है मेटल की मेटल के साथ, उसके कारण वो सब आपस पास जुड़े हुए हैं। ठीक है, पानी में थोड़े से दूर दूर है वही परमाणु, और वायु में और दूर दूर है ना, और स्पेस में है ही नहीं, मतलब स्पेस ऊपर जाए तो वैक्यूम है। तो ये बेसिकली 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है। और जो आत्मा है, आत्मा ऊर्जा है। आत्मा क्या है? कौन सी ऊर्जा है? एक तो फिजिकल ऊर्जा होती है, जैसे बिजली है ये फिजिकल ऊर्जा है, गर्मी है फिजिकल ऊर्जा है, किंतु आत्मा कैसी ऊर्जा है? स्पिरिचुअल ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, राइट, आध्यात्मिक ऊर्जा है, आत्मिक एनर्जी है ना? तो ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं। ऊर्जा को जैसे बिजली को हम देख सकते हैं क्या? इस तार में बिजली बह रही है हम देख सकते हैं? हम देख नहीं सकते। अगर तार भी उतार दो, रबड़ उतार दो, तो भी इसके अंदर क्या कॉपर का तार निकलेगा, और कॉपर के तार में दिखाई देगी बिजली जा रही है? नहीं दिखाई दे रही। क्या एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है? आवाज आ रही है ना, ये माइक एम्पलीफाई कर रहा है, बिजली जल रही है ना, पंखे चलते हैं, तो इसका प्रूफ है। ऐसे ही आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आत्मा ऊर्जा है, आत्मा को हम देख नहीं सकते। काफी सारे भाई बहन क्या करते हैं, आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम देख सकते हैं, देख सकते हैं माना अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, राइट। उसको भी कई बार क्या करते हैं लोग, समझ देखते हैं, बिंदु देखते हैं, इतना इतना सूक्ष्म है पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिसको कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी देख नहीं सकता, कोई मशीन देख नहीं सकती उसको, दुनिया कोई मशीन उसको देख, क्योंकि एनर्जी है। तो इसको देखने की हमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। ऐसे परमात्मा को हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, है ना। जैसे इसको अगर इसमें बिजली दिखाई नहीं देती ना, तो ऐसे ही अगर देखनी हो तो क्या करो, नंगे तार को हाथ लगा के देख लो, है ना, पता लग जाएगा, है ना, कि बिजली है कि नहीं। ज्यादा कई लोग जिद करते ना, मुझे दिखाओ दिखाओ, तो लगा के देख लो, है ना, नंगा था तो पता लग जाएगा क्या बिजली, फिर कभी दोबारा नहीं कहेंगे मुझे देखना है ना। ऐसे ही आत्मा का भी, आत्मा एनर्जी है, मैं देख रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, हार्ट चल रहा है, सांस आ रहा है, पेट में खाना पच रहा है, हम खड़े हैं, है ना, ये क्या है, आत्मा चला रही है शरीर को। आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब आत्मा कैसे चला रही है शरीर को, आत्मा से सात एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, सात आध्यात्मिक एनर्जी है, सात आत्मिक ऊर्जाएं हैं, चैतन्य, वो भी चैतन्य ऊर्जा, आत्मा भी चैतन्य ऊर्जा है, और उससे फिर सात चैतन्य ऊर्जाएं निकलती रहती हैं। कौन कौन सी, पहली है ज्ञान, ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ, सत्य माना ट्रूथ। ट्रूथ की परिभाषा क्या होती है, सत्य की क्या परिभाषा है, सत्य की पहली परिभाषा है वो अविनाशी है, एटर्नल है, कभी मरता नहीं है, पहली परिभाषा ये है। सत्य कभी मरता नहीं, ना पैदा होता है ना मरता है, और कभी बदलता, और दूसरी परिभाषा है कि वो कभी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, राइट। जैसे सबसे बड़ा सत्य कौन सा है, परमात्मा सबसे बड़ा सत्य है, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना, कि परमात्मा सदा ही क्या है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, वो कभी पैदा होता है क्या, कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, और सदा ही एक जैसा रहता है, वो सदा ही एक जैसा है। हाँ, अवतरण होता है ब्रह्मा के तन में, किंतु वो वैसा ही बिंदु है। ऐसे ही दूसरा सत्य आत्मा है, आत्मा क्या है, आत्मा भी ज्योति बिंदु है, और क्या है वो, आत्मा कभी पैदा होती है क्या, सत्युग में पैदा होती है, अभी मरने वाली है क्या, कलयुग है, वो भी अविनाशी है। दूसरा, आत्मा जैसी थी जब सत्युग के शुरू में आई थी, तब भी उतना इतना ही थी, आज भी उतनी है, आप पैदा होते हैं, छोटे सा शरीर होता है तो भी उतने, और बड़े हो गए, बूढ़े हो गए तो भी उतनी। तो ये दो बातें मतलब इंपॉर्टेंट है। तो चार बातें सत्य है, पहला क्या है, आत्मा सत्य है, दूसरा परमात्मा सत्य है, तीसरा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का संबंध सत्य है, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है। सत्य माना वही बात, अविनाशी और ना बदलने वाला। हमारे देह के संबंध जो है, माता पिता और क्या होते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, कैसे हैं, एक दिन संबंध बनते हैं, एक दिन मर जाते हैं, और कभी भी बदल सकते हैं, कभी बदल सकते हैं, माँ बाप मर गए तो संबंध खत्म हो गया ना, तो संबंध बदल सकते हैं कभी भी। आज दोस्ती है, कल क्या हो जाएगी, दुश्मनी हो सकती है। माता पिता और बच्चों में भी कभी कभी ऐसा होता है, आपस में झगड़ा हो जाता है, बातचीत बंद, संबंध खत्म, राइट। तो माता, हमारा शिव बाबा से संबंध कैसा है, आत्माओं का सत्य है, राइट, सत्य ट्रुथ है, सदा है और सर्व संबंध है, एक संबंध नहीं, सर्व संबंध है। किसी देहधारी से हमारा एक ही संबंध हो सकता है, दो संबंध मैक्सिमम हो सकते हैं, किंतु परमात्मा से हमारा सर्व संबंध है, और हर ये संबंध, हर सर्व संबंध साथ साथ हर जगह है। देहधारी कोई आपके साथ हमेशा हो सकता है क्या, आपके मम्मी पापा साथ में है क्या, अभी है क्या, नहीं ना, कि तो शिव बाबा सदा ही हमारे साथ है ना, और सब जगह है, और सब हर समय है, हर समय। हम नहाने जाते बाथरूम में, हमारे माँ बाप हमारे साथ होते हैं क्या, हमारे भाई बहन हमारे साथ होते हैं क्या, कि तो बाबा बाथरूम में भी हमारे साथ होता है ना। कितना ही बेड पे पड़े हो, बिस्तर में पड़े हो, सीरियस हालत में हो, आईसीयू में हो, तो भी बाबा हमारे साथ है। तो कोई और संबंधी साथ नहीं होता, आईसीयू में किसी और का जाना अलाउड नहीं होता है ना, तो बाबा हमारे साथ रहता है, अभी नहीं रहता है, रहता नहीं रहता है। तो सर्व संबंध और सर जंगे हैं, तो ये जो है, और डी और चौथी बात है ड्रामा। ड्रामा भी सत्य है, अनादि है, बना बनाया है, अविनाशी है, ठीक है, ये भी कभी पैदा नहीं होता, ड्रामा कभी बना नहीं है, पैदा नहीं हुआ, कभी मरा नहीं, और कभी जैसा का जैसा वैसा का वैसा चलता है, एक्यूरेट एकदम वही। अब कितना भी पुरुषार्थ करूं मैं, कि तो मेरा जो पद फिक्स है सत्य में वही मिलने वाला है, मैं कहूँ दो चार सीट नीचे आगे चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? इस साल ज्यादा पुरुषार्थ करके आगे निकल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पीछे चला जाऊं पुरुषार्थ करके, वो भी नहीं हो सकता। एक्यूरेट है, इसमें भी कर्म सत्य है। कर्म माना जो हमने एक बार कर्म कर लिया अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, वो सत्य है, वो कभी मिटता नहीं है, माफ नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा, माफ नहीं हो सकता। हाँ, ब्याज योग से क्या होता है, योग से ब्याज माफ हो जाता है। क्या हो जाता है? योग से क्या ब्याज माफ होता है? ब्याज है ना। तो ये जो है, जो इसको मैं कहता हूं एबीसीडी, है ना, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। तो ये ज्ञान है, सार रूप में ये ज्ञान है। दूसरी एनर्जी पवित्रता है, इस ज्ञान से पवित्रता बनती है। तीसरी एनर्जी शांति है। चौथी एनर्जी प्यार है, रूहानी प्यार, वैसा प्यार नहीं, रूहानी प्रेम। और फिर उसके बाद कौन सी शक्ति है? अतीन्द्रिय सुख है, और फिर आनंद है, और फिर सर्वशक्ति, आठों शक्तियां। तो सात एनर्जी आत्मा से हमेशा निकलती है, हमेशा निकल रही है, हमेशा हर सेकेंड निकल रही है। और सारे शरीर में दिमाग की 100 अरब, दिमाग में 100 अरब कोशिकाएं हैं, और पांचों कर्मेंद्रियां हैं, और शरीर हमारा 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। जैसे मकान ईंटों से बनाता है, हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना है, 8 ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर। तो सबको पोषित कर रही है। आत्मा निकल जाए तो कुछ भी काम नहीं करे, निकलते ही सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये काम 24 घंटा हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है, हर श्वास हो रहा है, हर संकल्प में हो रहा है, ये रेगुलर हो रहा है। इसकी अवेयरनेस है ना, ये हमें पता रहे कि ये काम कैसे हो रहा है, यही मेडिटेशन है। ठीक है, ये सत्य है ना, सत्य को रियलाइज करते रहना। मेडिटेशन क्या है, राजयोग मेडिटेशन क्या है, अंग्रेजी में कहूं तो इसको कहते हैं बीइंग द ट्रुथ। सत्य बनना ही राजयोग मेडिटेशन है। लिविंग द ट्रुथ, सत्य रहना ही राजयोग मेडिटेशन है। और रियलाइजिंग द ट्रुथ, सत्य को अनुभव करते रहना ही राजयोग मेडिटेशन है। तो दिल क्या है, जहां ये आत्मा यहां पर है, दोनों ब्रेन, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, इसका सेंटर है हाइपोथैलेमस। यहां पर इन दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, बीच में है, ये हाइपोथैलेमस का कंट्रोल रूम है। और इस कंट्रोल रूम में ये सीट ऑफ द सोल है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल करना। ये दो ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन, पूरी बॉडी कंट्रोल करते हैं, और इन दोनों ब्रेन का कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और वहां आत्मा की सीट है। यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, जहां दोनों लाइन कटती है ना, उसके बीच में आत्मा की सीट है, वो पॉइंट ऑफ एनर्जी है। जैसे अभी हम माउंट आबू पर आ रहे थे ना, तो रास्ते में कितना पानी गिर रहा था, बहुत सारे झरने चालू हैं, कहीं कहीं जगह तो ऊपर इतने ऊपर से पानी गिरता है, 300-400 फुट से भी पानी गिरता है, कि तो बिजली बनती नहीं है। कि तो भाखड़ा डैम है या नर्मदा डैम है ना, गुजरात में है ना नर्मदा डैम है, तो वहां पर बिजली बनती, कैसे बनती है? पानी 350 फुट से ऊपर से गिरता है, और नीचे क्या है, टर्बाइन्स होते हैं, टर्बाइन से पानी गिरता है, टर्बाइन चालू होते हैं, उससे बिजली पैदा होती है, और उस डायनामो भर के फिर 22,000 वोल्ट की तारें, फिर 11,000 वोल्ट की तारें आपकी सिटी में आती, पावर हाउस में, आपके पावर हाउस में, फिर आपकी गलियों में 1100 वोल्ट के क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, फिर वहां से आपके घर में 220 वोल्ट की तारें आती, करंट आती, उससे क्या होता है आपके घर में, क्या क्या होता है, लाइट, पंखा, हीटर, और एसी, फ्रिज, और इंडक्शन प्लेट, और क्या क्या चीजें होती हैं, कंप्यूटर, फोन चार्ज करते हो, सब कुछ कैसे करते हैं, लाइट से होता है ना। तो मतलब एक एनर्जी जो लाइट एनर्जी थी, कितने सारे काम हो गए। ऐसे ही आत्मा यहां से एनर्जी निकल रही है ना, ये सात एनर्जी, वो सातों एनर्जी यहां से निकल रही, वो जैसे पहाड़ पे पानी गिरा, नीचे टर्बाइन नहीं है, यहां टर्बाइन है, मतलब यहां पर जो ज्ञान निकला ना, ज्ञान यहां से आत्मा से अवेयरनेस निकल रही है, मैं हूं ना, मैं आत्मा हूं। दूसरा क्या है, मैं ऑल माइटी अथॉरिटी की संतान हूं, परमात्मा की संतान हूं। किसको इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं हम, किसी को अपना परिचय कैसे देते हैं, मैं सो एंड सो, मेरा बाप, नहीं हो तो भी बोल देते हैं ना, मेरा बाप इंस्पेक्टर है पुलिस का, मेरा बाप डीएसपी है ना, मेरा बाप एसपी है ना, ताकि सामने वाला चुप हो जाए, है ना। मेरा चाचा ये है, वहां का आईएएस है ना, मेरा ये है, मेरा ये है ना। तो यहाँ पे सत्य है ना कि मेरा बाप कौन है, सारे विश्व का मालिक है ना, मैं उसका बेटा हूं या उसकी बेटी हूं ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम ऐसे बाप से, मैं उसकी संतान हूं, है ना, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, एक नहीं। और डिफॉल्ट ड्रामा है, संसार रूपी नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या, एक नाटक है, ड्रामा है। इसमें हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा कौन है इसका, इस ड्रामा का, क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ कैसा हुआ है, अच्छा कि बुरा, कि बुरा हुआ है, किसने मेरे को 10 गालियां दी अभी तक, है ना, अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ। क्यों गालियां दी, क्यों गालियां दी बताओ, कोई मेरे रोज इंसल्ट करता है मुझे, सुबह से मिले गए, घर से उठते ही इंसल्ट होनी शुरू होती है ना, तो कोई क्यों इंसल्ट करते हैं, पार्ट नहीं है, मैंने उसकी इंसल्ट की हुई है ना। अभी मुरली में था ना बाबा के, एक मुरली था ना पीछे, कि एक पुरुष स्त्री को क्यों मारता है, पिछले जन्म में उसने, उस स्त्री ने उसको मारा, अभी ब्याज के साथ मारता है ना, है ना, हिसाब किताब है ना। तो कर्मों का हिसाब किताब क्या है, कर्मों का हिसाब किताब ये है कि मैंने एक बार हिसाब लगाया था, 100 साल पहले अगर किसी ने आपसे 10 रुपया उधार लिया, आपने उधार लिया और वापस नहीं किया, आपका दोस्त था समझो, वापस हम मर गए, शरीर छोड़ दिया, देना नहीं दे पाए, तो अगले जन्म में क्या होगा, वो आपका बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, पत्नी बन के आएगा, पति बन के आएगा, सास बन के आएगा, कुछ ना कुछ बन के आएगा, और आपको 10 रुपये वापस करना पड़ेगा, उसका ब्याज वापस करना पड़ेगा, है ना। तो ब्याज कितना होता है 10 रुपये का, 100 साल के बाद 4,19,00,000 रुपए, है ना। अभी हिसाब लगाना है ना, 20 गुना मल्टीप्लाई होता है, 20 बार मल्टीप्लाई होता है, अगर वो ब्याज लगाएंगे ढंग से, तो मैं अभी टाइम नहीं है, बताता आप कैसे 20 बार 4,19,00,000 गिन के बताता आप कैसे होता है। तो सोचो आपने 100 साल पहले किसी से एक बार उसकी इंसल्ट की, तो कितनी बार इंसल्ट सहनी पड़ेगी, कम से कम 20 बार तो सहनी पड़ेगी, 20 गुना मैंने बताया ना, 20 गुना तो 20 गुना तो सहनी पड़ेगी, नहीं सहनी पड़े, नहीं 20 बार तो आपको इंसल्ट होगी ना आपकी, नहीं। एक बार आपने गाली दी किसी को तो कितनी गाली खानी पड़ेगी, 20 बार तो खानी पड़ेगी, नहीं। तो मतलब ये पक्का है, दुख दिया तो दुख, सुख दिया तो सुख, है ना। कहते हैं 100 साल पहले गीता ना, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो 100 साल के बंधन तो चलते हैं ना। तो ये जो है, ये जो कर्मों का हिसाब किताब है। और योग से क्या होता है, ब्याज तो मूलधन तो देना पड़ता है, मूलधन कभी माफ नहीं होता। मैंने बताया कर्म सत्य है, कर्म सत्य है, चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो। आपने देखा दादियों को भी देखते हैं, बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, उनको भी हिसाब किताब आते नहीं आते, तो वो सूली से कांटा हो जाता है। अब मान लीजिए किसी को 4,19,10,000 रुपए देने हो तो कितने हो गए, ये सूली है, सूली है कि नहीं है। अभी क्या हुआ, आपने अच्छे से योग किया, बाबा की श्रीमत के अनुसार एक्यूरेट योग किया, तो क्या हो गया, 4,19,00,000 माफ हो गया। कितना देना पड़ेगा अभी, 10 रुपए। 10 रुपए दे सकते, नहीं दे सकते, दे सकते ना, तो देना ही पड़ेगा, किसी को माफी नहीं है। तो इस तरह से कर्म सत्य है। तो ये राजयोग मेडिटेशन क्या है, ये जो 7 एनर्जी है ना, ये जो सबसे ज्यादा कहां पर है, यहीं पर वो सेल्स है हाइपोथैलेमस में, जो आत्मा की इस एनर्जी को सेंस कर सकती है, इस ABCD को सेंस कर सकती है, इस पवित्रता को सेंस कर सकती है, शांति जो निकल, शांति की जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं उसको सेंस कर सकती है, रूहानी प्यार के वाइब्रेशन को सेंस करती है, अतीन्द्रिय सुख के वाइब्रेशन को सेंस करती है ना, अतीन्द्रिय सुख आनंद के वाइब्रेशन को सेंस कर, शक्तियों के वाइब्रेशन को सेंस करती है। वो एनर्जी से मेंटल एनर्जी पैदा होती है, मानसिक ऊर्जा पैदा होती है। मतलब दो तरह की हमारे पास वो होती है, फाइल्स होती है, एक तो सॉफ्ट कॉपी होती है, आत्मा में सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी समझते हैं, कंप्यूटर सब जानते हैं, माता ही नहीं जानते, सिर्फ एक तो हार्ड कॉपी होती है, कागज पे प्रिंट लेते हैं ना, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो कंप्यूटर में होती है ना हार्डवेयर, उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है, एक अंदर सॉफ्ट कॉपी होती है, मतलब वो अंदर आत्मा में रहती है, और ब्रेन में एक हार्ड कॉपी होती है, ब्रेन में भी उसका प्रिंट रहता है ना, तो वहां पर हार्ड कॉपी होती है। तो आत्मा जब निकलती है तो सब कुछ ले जाती है ना, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब निकाल कर ले जाती है, ठीक है। डेड बॉडी से हम कुछ निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं क्या, ये आदमी क्या सोचता था, इसके अंदर क्या क्या स्टोर था, एक यहाँ पे क्या लगा पेन ड्राइव लगा के देख सकते हैं क्या, इसमें निकाल लो है ना, डाउनलोड कर लो डाटा, नहीं निकाल सकते ना, किंतु आत्मा के पास सारी एनर्जी है। तो आत्मा के यहां से जो एनर्जी निकल रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर है, जहां आत्मा है ना, उससे दिया होता ना, दिए की लो होती है, जैसे बल्ब है, इस बल्ब के आसपास सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी है, जितना दूर जा रहे हैं लाइट एनर्जी कम होती जा रही है, जैसे पीछे की तरफ और कम हो जाती, तो लाइट एनर्जी सबसे ज्यादा इसके पास, उसको दिल कहते हैं, ठीक है। जहां सबसे ज्यादा एनर्जी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, इसको कहते हैं दिल। इसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, इसको कॉन्शियंस भी कहते हैं, कॉन्शियंस अंतरात्मा भी कहते हैं, ठीक है। इसी को दिल भी कहते हैं, इसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसको पलके भी कहते हैं, पलके बाबा कहते हैं, अपनी पलकों में बिठा के ले जाता हूं, इसी को पलके भी बाबा कभी कभी, इसे गोदी भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, गोदी। इसको मंदिर भी कह देते हैं ना, क्या कहते हैं, दिल एक मंदिर है ना, तो इसमें मंदिर, इसमें आत्मा रूपी मूर्ति रहती है, राइट, समझ में आई ये बात। ये तो सात एनर्जी जो है ना, इससे दिल है। तो आत्मा के पास इतना सा ज्ञान है, कितना ज्ञान है अभी भी, कितना ज्ञान है, ज्ञान में 20-30-40 साल का, कितना कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान बाकी है बताओ। अभी बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, मैं जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ए फॉर एप्पल ऐसे बोलता है ना, बी फॉर बैट, हम भी क्या बोलते हैं अंदर अंदर, मैं स्थूल दे नहीं, स्थूल दे को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। 40 साल ज्ञान में चलने के बाद भी बार बार याद दिलाना पड़ता है मैं आत्मा, है ना, ऐसा नहीं होता बहने बताओ, याद दिलाना पड़ता है ना, बार बार क्या याद आता है, शरीर का नाम याद आता है, बार बार याद आएगा मैं टीचर हूं, बार बार याद आएगा मैं ये हूं, मैं माँ हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं नहीं करना पड़ता। जो इस बात से मुक्त हो गए, हाथ हाथ उठाओ, जिनको बार बार अपने आप को मुश्किल होती है याद दिलाना पड़ता है ना आत्मा, ये जिनको ऑटोमेटिक हो गया वो हाथ उठाओ, जिनको ऑटोमेटिक हो गया मैं आत्मा हूं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ऐसा हो गया, नहीं हुआ ना। तो ये जो है, ये दिल है, ये कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस अंतरात्मा है। ऐसे परमात्मा का दिल कितना बड़ा होगा बताओ, हमारे पास तो थोड़ा सा ज्ञान है, वो भी धक्का लगा के चलाना पड़ता है, पवित्रता भी थोड़ी सी है, शांति भी थोड़ी सी है, थोड़ा सा कोई सामने से तंग करे, मेरा इम्तिहान मत लो, मेरी शांति का इम्तिहान मत लो, बोलते नहीं बोलते है ना, थोड़ा रूहानी प्यार थोड़ा सा है, इतना सा ना, थोड़ा सा भी कुछ सामने वाला कुछ करे, इतना प्यार भी नहीं मुझे तुमसे है ना, ठीक है, कि मैं सब कुछ सहन कर लूं तुम्हारा, है ना। अतिंद्र सुख, थोड़े दुखी हो जाते हैं, कोई हमें कुछ कह दे, कोई बात हो जाए तो अतिंद्र सुख की खत्म, है ना। आनंद, कोई सुई चुभ जाए सुख खत्म, नहीं, आनंद नाम मात्र का है ना, परमात्मिक शक्ति भी थोड़ी देर में भूल जाते हैं, जिससे कोई लगाव है थोड़ा, एकदम सारा परमात्मिक शक्ति खत्म, निर्णय शक्ति खत्म, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति खत्म, समेटने की शक्ति खत्म, सहन समाना सामना सहयोग सब खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा है कि बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है पहले से, किंतु हमारी स्पीड अभी क्या चाहिए, फास्ट चाहिए ना, तीव्र गति चाहिए ना। तो कब से कब आएगी, कौन सी तारीख को आएगी, आज संडे को आ जाएगी ना, चलो बहुत, नहीं आज की मुरली सुनी ना, सर्वंश त्यागी बनो तो वो पावर आ जाए ना, आज की मुरली सर्वंश त्यागी तो वो आ जाए ना, सात प्रकार का बाबा ने त्याग बताया ना, तो करो वो हो जाए तो आ जाए, ठीक है। तो ये दिल है, परमात्मा का दिल कैसा है, परमात्मा के पास कितनी है, कितना ज्ञान है, वो तो ज्ञान का सागर है ना, सागर देखा आपने, जिन्हें सागर देखा हाथ उठाओ, शोलापुर के पास सागर है कि नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर भी सागर जिसने देखा हाथ उठाओ, काफी लोगों ने देखा। तो सागर कितना बड़ा होता है, कितने लीटर पानी होता है सागर में, 100 लीटर 200 लीटर है ना। तो परमात्मा कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, कितने साल से बाबा मुरली चला रहे है ना, और कितना देखो तो अव्यक्त मुरलियां देखो, पिछले 48 साल की मुरलियां देखो, कितनी वंडरफुल मुरलियां, मैं तो पढ़ता हूँ, मेरे को इतना मतलब बाबा पे इतना वो आता है, क्या कहें, इतना मतलब बाबा पे इतनी उसकी क्या, कितना जबरदस्त उसकी मूल्य, कितनी गहराई है उसकी मूल्यों की। कोई देहधारी तो क्या उसके पास तक नहीं, सूरज के सामने दीपक कहते ना, दीपक भी नहीं, कुछ भी नहीं होता इंसान को, इंसान कुछ भी सुना नहीं सकता उसके सामने। कितनी वंडरफुल उसकी मूल्यां होती है, अव्यक्त मूल्यां, 49 साल से है ना, 48 साल से एक वंडरफुल मूल्य है। और साकार मूल्य तो हम सुनते ही हैं, तो वंडरफुल मूल्यां, कितनी गहराई उनके अंदर होती है। तो बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर। अच्छा मैं कहूं तो बाबा सदा सत्य है, सत्य, हमने कहा सत्य की समझ, तो बाबा को मैं कहे तो परम शिव बाबा क्या, सदा सत्य है, सदा ही सत्य है, मतलब सदा ही आत्मा है उसको, सदा ही परम सुप्रीम सोल है वो, कभी देहधारी बनता ही नहीं ना, अजन्म है तो देहधारी बनता ही नहीं, तो सदा सत्य है। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, गॉड के अलावा आत्मा भी थोड़ी देर के लिए आधा कलप सत्य है, और आधा कलप असत्य हो जाती है, असत्य माना आधा कलप सत्व प्रधान है, और आधा कलप क्या हो जाती है, आधा कलप तमो प्रधान हो जाती है, तमो रजोतमो हो जाती है। और फिर कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है और शिव ही सदा सुंदर है, मतलब शिव ही सदा सत्य है, माना सदा ही सातों गुणों का सागर है, और सदा क्या है सुंदर, माना सदाई पवित्र है, पावन है। और आत्मा क्या करती है, आत्मा, इसलिए मैं सेकंड नंबर पे आत्मा को बोला, पहले परमात्मा सत्य, दूसरा आत्मा, क्योंकि परमात्मा ऐसा है कि तो आत्मा आधा गलत सत्य है, आधा गलत असत्य हो जाती, झूठी हो जाती है ना, तांबा बन जाती, लोहा बन जाती है ना, और आधा कलप आत्मा सत्व प्रधान है, सातों गुणों से भरपूर है, पावन है, और आधा कलप क्या हो जाती, आधा कलप सुंदर है, और आधा कलप श्याम हो जाती है ना, भाई श्याम श्याम ना, मैं काली हो जाती ना आत्मा। तो ऐसे मतलब ये आत्मा का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो परमात्मा सात गुणों का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर, रूहानी प्यार का सागर, अत्यंत सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा का दिल कितना बड़ा होगा, हमारा दिल तो इतना सा है, और बाबा का दिल कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, इसलिए बाबा कहते हैं मेरा दिल कितना बड़ा है, मेरा दिल तख्त, दिल तख्त माना बाबा का दिल इतना बड़ा है जिसपे हम सब आत्माएं समा सकती है। कोई कंपटीशन नहीं है वहां पे, है ना, कोई अकूट है, कितनी हम बाबा का कहते हैं कैसे बाबा के दिल में, बाबा तो कहते बच्चे आ जाओ अपनी अपनी थाली लेके मेरे पास आ जाओ, मेरे दिल में ही बैठ के खाना खा लो, है ना, सैर करनी है मेरे दिल में आके सैर कर लो, नहीं बाबा कहते सोना भी है तो कहां जाए, कहां के सो जाओ, मेरे दिल रूपी गोदी में आके सो जाओ, नहीं ऐसे कहते कि आप बेड पे सोना है, आपका बेड तो गैरेज है, गैरेज होता है ना, ये गाड़ी की एक गाड़ी है, गाड़ी को कहां पे पार्क करते हैं, गैरेज में, और फिर कहां जाके सोते हैं, अपने बेडरूम में, बेडरूम में ना, गैरेज में मक्खी होती है, मक्खी मच्छर कितने होते हैं ना, तो सपने क्या होते हैं, मक्खी मच्छर के साथ माफी खाते हैं, है ना, हमें नींद से ढंग से सोने नहीं देते ना, है ना, और मक्खी मच्छर नहीं चाहिए, हम चाहिए मक्खी मच्छर, कहां सोना है, बेडरूम में, है ना, तो बेडरूम कौन सा है हमारा, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन है, और उसमें हमारा बेड कौन सा है, बाबा की गोद, है ना, तो ये दिल बाबा की गोद है, राइट, तो वहां जाके सो सकते हैं। तो दिल बाबा कितना बड़ा है, समझ में आ रही, दिल कोई देखने की चीज नहीं है, कई बार हम कहते हैं ना भी आम को, आम देख कितना मीठा, आम कितने तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के, 100 तरह के आम होते हैं, अलग अलग सबका टेस्ट अलग अलग होता है, होता नहीं होता, हम क्या बोलते हैं, चार तरह के आम काट दिए, अल्फेंसो भी काटा, दशहरी भी काटा, सफेदा भी काट दिया, और केसर भी काट दिया, हम कहते क्या क्या कहते हैं, चक्के तो देखो, है ना, कितना बढ़िया, कितना मीठा आम है, तो आपने खाया, दिखाई दिया उसे, उसका मिठास दिखाई दिया, दिखाई तो दिया ना, नहीं दिखाई दिया, अनुभव किया ना। तो ऐसे ही आत्मा को भी, आत्मा के जो सात गुण है ना, इनको हम देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, इनको अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान का टेस्ट अलग है, जैसे जैसे दशहरी का टेस्ट अलग है, अल्फेंसो का टेस्ट कैसा है, अलग है, और कैसे कैसे का टेस्ट अलग है, राजापुरी का टेस्ट अलग है ना, अलग अलग टेस्ट होते हैं ना, ऐसे ही ज्ञान का टेस्ट अलग है, ज्ञान की अलग ही अनुभूति होती है, पवित्रता की अनुभूति अलग ही होती है, शांति की अनुभूति अलग ही होती है, रूहानी प्यार की अनुभूति अलग होती है, आनंद की अतिंद्रिय सुख की अनुभूति अलग, आनंद की अनुभूति अलग और शक्तियों की अनुभूति अलग। शक्तियों में भी एक एक शक्ति की अनुभूति अलग है। ऐसे बाप से हमारे संबंध है ना, माँ का संबंध अनुभूति अलग है, बाप के संबंध से अलग अनुभूति है कि बाबा एक ही है, जैसे आम एक ही है, नाम आम ही है सबका, है ना, किंतु अनुभूतियां टेस्ट अलग अलग है। ऐसे ही बाबा से एक एक चीज की अनुभूति अलग अलग होती है। टेस्ट करके देखा कभी, टेस्ट करके देखा बाबा का, टेस्ट किया कभी? नहीं किया, किया ना, संबंध में किया। और प्यार का टेस्ट किया, बहुत अच्छा। तो इसकी टेस्ट और सबको अलग अलग है, सबका भी अलग अलग है। ऐसा भी नहीं कि सबका प्यार का टेस्ट सबका अलग जैसा है, किसी को कैसा प्यार का, किसी को कैसा प्यार, किसी को कैसा प्यार, सबका टेस्ट भी, उसके बहुत वैरायटी है ना। मेरे को तो 10-15 तरह की वैरायटी का पता है, बाकी और भी बहनों को ज्यादा पता होगा, टीचर बहनों को ज्यादा पता होगा, है ना। तो ये जो है मतलब एक एक वैरायटी वंडरफुल। तो ये दिल तक है ना, तो बाबा का दिल तक भी है। अब बाप हमारा है, हमारी माँ है, माँ बाप है, हमारे माता पिता है, अब वो उसके दिल पे कौन बैठ सकता है, कौन बैठ सकता है? बच्चे, कौन से वाले बच्चे? कहना ना मानने वाले बच्चे, शोर करने वाले बच्चे, शैतान बच्चे, है ना, आज्ञाकारी बच्चे, वफादार बच्चे, ईमानदार बच्चे, फरमान बरदार बच्चे, है ना, सपूत बच्चे बैठ सकते हैं ना। तो परमात्मा के दिल में जैसे माँ बाप की गोदी में कौन जबरदस्ती चढ़ के बैठ सकता है कोई? ऐसे कहते हैं ना, तो इतना बड़ा हो गया समझदार नहीं, समझ परे दूर हो जा, है ना। और प्यारा बच्चा हो तो बड़े बड़ा हो तो भी माँ कहेगी आ जा बेटा आ जा, कम से कम सिर तो अपनी गोदी में रखी लेगी, नहीं करेगी? तो मतलब हमें क्या बनना है? आज्ञाकारी। पहली पहली आज्ञा क्या है बाबा की? पवित्र भव योगी भव, पवित्र बनो और योगी बनो। तो ये आज्ञा है ना। वफादार माने मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार माना जो भी मैं संकल्प करूं, बोल करूं, बोलूं किसी से भी, या कर्म करूं, किसी संबंध संपर्क में किसी से आऊं, मेरे पास 3 खजाने हैं, संकल्प, श्वास और समय, सबसे सबके पास होते हैं, मैं वो संकल्प, श्वास और समय बाबा की श्रीमत पे यूज करूं, अपनी मनमत पे या परमत में, दूसरे ने कहा ऐसा कर लो, नहीं नहीं उससे नहीं, उसका नहीं मानना, मेरा मन कहता है ऐसे कर लो, ये भी नहीं मानना, किसकी किस पे मानना है? श्रीमत, बाबा क्या कहता है, मेरा मीठा बाबा क्या कहता है, तो वो क्या कहता है उस पे चलना, इसे कहते हैं ईमानदारी, राइट। और फिर फरमान बरदार, बाबा का फरमान क्या है? बाबा का फरमान है बच्चे, देह, देह के सर्व संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार, इन चारों को बुद्धि से निकालो पहले, बुद्धि से निकाल, बुद्धि से त्याग दो और फिर अपने को आत्मा समझ पाओगे। अगर अपने को देह समझा है, देह भान में रहते हैं, देह का कोई भी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, संपर्क वाली आत्माएं भी, अगर वो भी मेरे दिल में रहती हैं, तो बाबा क्या करेगा? मैं अपने को आत्मा रियलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो हमें क्या करना है? देह, देह के सर्व संबंध, संपर्क भी साथ में, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से त्याग दो, भूल जाओ, और फिर अपने को आत्मनिश्चय करो। और फिर क्या करो? आत्मनिश्चय करने के बाद ही बाबा को याद कर सकते हैं। तब परमात्मा, तब मुझे याद करो, मां में कम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। तो इस तरह से अपने आप को बहुत गहराई से, और जब जब विक्रम विनाश होंगे तब हम पावन सत्व प्रधान बनेंगे। सत्व प्रधान माना, सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर, तब हम सातों गुणों से भरपूर बनेंगे और उस स्थिति को पावन स्थिति कहते हैं। और जब ऐसे पावन बनेंगे तब हमारा बाप से सच्चा मिलन होगा। नहीं तो क्या, कैसा मिलन होता है बाबा से? सभी जानते हैं ना, अमृत वेले कैसे मिलन करते हैं, कैसा मिलन करते हैं, कैसा मिलन होता है बताओ? आप सब जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, पर मुश्किल से 45 मिनट में, मुश्किल से 1 या 2 मिनट में मिलन नहीं होता है ना ढंग से ना, जो सही मिलन होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से धक्का लगा के सूक्ष्म वतन पहुंचे और वहां से भी एक यूं किया, बस बाबा को देखा, अरे कि नीचे गाड़ी नीचे आ गई, है ना, झटके से नीचे आती है ना, लिफ्ट टूट जाती ना कभी कभी, ऊपर से नहीं टूट जाती, उसकी रस्सी टूट जाती ना, पुली से उतर जाती है, सीधी नीचे आ गई, आप दूध रखो गैस पे गर्म करने रखो और यूं भगोना रखा और यूं उतार लिया, क्या हुआ? दूध गर्म हुआ क्या? गर्म हुआ? हुआ ही नहीं। तो क्या करो, कम से कम रहो तो 5 मिनट तो रखना पड़ता है, रखना पड़ता तो 5 मिनट तो रहो कम से कम ऊपर, नहीं रहो पर रह कौन सकता है ऊपर, जो सारा दिन श्रीमत पे चलेगा, बाबा की सारी दिनचर्या सुबह से लेकर अमृत तले से रात तक बाबा की दिनचर्या चलेगा। तो ये जो है ये सारा जो सिस्टम है ना जो, तो पर बाबा का दिल तक नशीन वही बन सकता है, लास्ट संडे की मुरली थी ना याद होगा आपको, जो समीप होगा और समान होगा। समीप कौन हो सकता है? बाबा के जो समान होगा, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे संबंध संपर्क सब कुछ बाबा, ब्रह्मा बाबा जैसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ब्रह्मा बाबा, फॉलो फादर करना ना। तो ऐसा हमको दिल तक नशीन बनने के लिए ये हमको एक, मैं इसमें थोड़ा क्लियर कर देता हूं। तो राजयोग मेडिटेशन माना, राजयोग मेडिटेशन माना क्या? बाबा मुरली में कहता है बच्चे ज्ञान के एक पॉइंट का अनुभव करना ही राजयोग मेडिटेशन है। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, यह है ज्ञान, और मैं आत्मा हूं यह अनुभव करते रहो, यह है योग। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना, बहुत पूछते रहते हैं ये योग क्या होता है, हमारा योग लगता नहीं, हमारा योग लगता नहीं है ना। तो ज्ञान और योग में क्या फर्क है? मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये है ज्ञान, और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, इसको अनुभव करना ये योग है। एक एक संबंध को अनुभव करना योग है। अब किसको याद आएगा? जिसके दिल में सच्ची दिल कौन सी है? सच्ची दिल वो जिस दिल में ये पक्का हो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते हर श्वास में ये टेंशन हो, क्योंकि मैं आत्मा ही शरीर को चला रही हूं, शरीर नहीं चला रहा आत्मा को। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, ये क्या है? ये क्या है? इसका मतलब हम सोल कॉन्शियस नहीं है, हम रोल कॉन्शियस है ना, या मेटेरियल कॉन्शियस है। मेटेरियल मतलब देह के पदार्थ हमारी बुद्धि में भरे, हमारे दिल में भरे हुए हैं। जब दिल में, तो दिल में हमें क्या हुआ, दिल में हमें क्या आ गया है, दिल के अंदर कॉन्शियसनेस में सत्युग में सातों गुण भरपूर थे दिल में, इसलिए हमारी दिल सच्ची थी, सच्ची में ना अंदर ये था पक्का कि मैं आत्मा। तो सच्ची दिल माना जिस दिल में सिर्फ ये हो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा, राइट। और साफ दिल माना जिस दिल में एक बाप के सिवा दूसरा कोई देहधारी ना, अगर मेरी दिल में कोई भी है, माना मेरी अपनी देही है, तो मेरी दिल सच्ची दिल, साफ दिल नहीं। मेरे दिल में किसी के भी पति, कोई भी देहधारी, लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे मेरे लौकिक वाले माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो भी नाम होते हैं वो हो, चाहे कोई मेरे अलौकिक वाले भी हो, मतलब कोई भी टॉप टू बॉटम, तो मेरी दिल कैसे है? सच्ची दिल, साफ दिल नहीं है। जिस दिल में सिर्फ पक्का हो मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, या जिस दिल में सिर्फ ABCD हो, वो दिल कैसी दिल है? सच्ची दिल है, साफ दिल है। और ऐसी दिल में शिव बाबा आ जाते हैं। बाबा को बोलो ना, बाबा ये देखो ना, मेरे यहां देखो ये बेटा ना, मुझे बहुत प्यारा है ये दिल में, बाबा ये बेटा यहां बैठा रहे, आप भी इधर आके बैठ जाओ। क्या कहेगा बाबा? पहले इसको निकालो, घर से निकालो नहीं बोलता, क्या बोलता है? दिल से निकालो, दिल मतलब बुद्धि से निकालो। तो बाबा को खाली कमरा चाहिए, खाली चाहिए कि एक दो अलाउड है? एक दो तो अलाउड होना चाहिए, नहीं कॉम्बिनेशन में रह लेना, दो बेड भी होते हैं कमरे में तो आराम से रह सकते हैं, नहीं रह सकते? दो तो है ही ना, एक तो आप रह रहे हो, एक शिव बाबा रह सकते, दो से ज्यादा रह नहीं सकते है ना, डॉर्मेट्री थोड़ी ना हमारा दिल, अभी तक तो डॉर्मेट्री था। जब मनुष्यों का दिल कैसा होता है? डॉर्मेट्री की तरह होता है, डॉर्मेट्री माने इसमें 20-20 50 लोग 100 लोग भी रहते हैं ना, नहीं समझे डॉर्मेट्री कैसे होती है? बड़ा हॉल होता है ना, उसमें 100 बेड लगे हुए, उसमें है जी जनरल वार्ड है ना, प्राइवेट वार्ड नहीं, डिलेक्स रूम नहीं है ना, तो उसमें 100 लोग भी रहते हैं ना, सामान वामान भी बहुत सारा पड़ा रहता है ना, तो हमने अपने दिल को डॉर्मेटरी बनाया हुआ था पहले ना, मनुष्यों का दिल कैसा है, डॉर्मेटरी की तरह से सब उसमें बसते रहते हैं, वहीं पर सब गड़बड़ करते हैं, गंदगी भी करते रहते हैं, यहीं पर सब बस के रहते हैं। और फिर क्या होता है, तो अभी बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें अगर मेरे दिल तक नशीन बनना है तो पहले क्या करो, अपने दिल को साफ करो, देह देके सब संबंधों को निकालो, देके स्वभाव संस्कार देके पदार्थों को निकालो और अपने को आत्मा समझ, मुझे याद है एक एक संबंध से याद करो। ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, किसने कुछ भी किया है अभी तक, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, तो जो भी हुआ अभी तक अच्छा हुआ, किसने कुछ, क्योंकि हमारे 90% विचार कहां से आते हैं, या तो पास्ट से आते हैं, पास्ट के साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स, हमें बचपन से लेकर अभी तक क्या याद है, किसने हमको दुख दिया होगा, गाली दी होगी, इंसल्ट की होगी हमें, कोई हमसे गलत व्यवहार किया होगा, हमारे माता पिता ने भी किया होगा, पति पत्नी यहां पर उसने किया होगा, हमारे बच्चे ने कभी हमसे गलत बोला होगा, भाई बहन ने गलत बोला होगा, हमको वो ही याद है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड उसी से भरा हुआ है ना। और भविष्य में क्या होगा, इसके 90% विचार यहां से आ रहे हैं। देखो दूध होता है ना, दूध एक भगोने में दूध है, 2 लीटर दूध है, उसमें एक मक्खी गिर गई तो अभी क्या है, क्या दिखाई देता है आपको, दूध दिखाई देता है कि मक्खी दिखाई देती है, कोई भी आदमी देखे क्या बोलेगा, उसमें क्या बोलेगा, भगोने में क्या है, मक्खी है ना, मक्खी दिखाई देते हैं। ऐसे ही आप 40 साल से माँ बाप के साथ रहते हो, पति पत्नी 40 साल से रहते हो, 30 साल से रहते हो, जो भी पति ने आपको या पत्नी ने आपको कोई 30 साल 20 साल पहले कोई बात कही होगी ना, उसकी शक्ल देखते ही वो मक्खी दिखाई देती है ना, नहीं नहीं होता ऐसा, ऐसे सेंटरों में भी होता है ना, घरों में भी होता है, सब जगह ऐसा ही होता है, ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, बॉस को देख के कि किसी ने किसको भी देख के क्या होता है, उसने जो हमसे एक गलत बार बोला ना, एक बार गलत बोला होता है, कितनी भी सेवा की हो, माँ बाप ने कितनी भी सेवा की हो बच्चों की, पाल पोस के बड़ा, कितना सुख दिया, कितना ध्यान रखा, पैसे खर्च किए, कि तो बाप ने एक बार गलत बात बोली थी, बच्चे को उसका मुंह देखते ही, बाप का मुंह देखते वही याद आता है ना, नहीं होता, क्या दिखाई देती है, मक्खी दिखाई देती है ना। ऐसे ही हमको 90% हमारे विचार कहां से थे, पास से आते हैं। तो ये जो हमारा, इसलिए सबसे बड़ी बाबा ने हमें गिफ्ट दे दी है, बच्चे जो हुआ अच्छा, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा होने वाला है, और अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब हम बाबा की गोद में बैठे। ब्राह्मण माना क्या, ब्राह्मण माना बाबा की गोद में ना, बाप दादा की गोद में बैठे, और बाबा हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो बाबा सदा हमारे साथ है, हर जगह हमारे साथ है, हर संबंध से हमारे साथ है, हर समय हमारे साथ है। और अभी भविष्य में क्या होगा कि अब बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं तो हमारे कर्म अच्छे कर रहे हैं तो फल अच्छा ही होगा, राइट। कल क्या होगा, कल बहुत अच्छा, उससे परसों क्या होगा, उससे भी अच्छा, और तरसों क्या होगा, उससे भी अच्छा, और फिर भविष्य में क्या होगा, सत्युग में क्या होगा, उसकी तो बात ही मत पूछो, नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बोलो, सोने हीरे के जो महलों में रहेंगे, और कभी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, आज की मुंडी से सदा स्वस्थ रहेंगे, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, और धन भी स्वस्थ। धन भी स्वस्थ कैसा होगा, खूब धन होगा, अपार, गिनने की कभी आवश्यकता नहीं होगी ना, अभी तो गिन के रखने पड़ते ना, है ना, तब तक गिनने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा हम दुनिया में जा रहे हैं, तो जितना इस एबीसीडी को बार बार रिवाइज और रियलाइज करते हैं, याद रहे मेडिटेशन रियलाइज करना, रिवाइज करना और रियलाइज करना, मेडिटेशन का मतलब विजुलाइज नहीं करना, इमेजिन नहीं करना, कई बार इमेजिन करते मैं आत्मा से चमक रही हूं, परमात्मा ऊपर चमक रहा है, एक सूक्ष्मतन अपना ही बना लेते हैं ना, एक वहां पे बना लेते हैं, आधा कल्प से हमको क्या किया, क्या आदत पड़ी है, मूर्ति बनाने की आदत पड़ी, अभी हम क्या करते हैं, मिट्टी से नहीं बनाते हैं, पत्थर से नहीं, अभी क्या करते हैं, अपने मन से बना लेते हैं ना, ये आत्मा, ऐसी आत्मा, ऐसा परमात्मा, ऐसा सूक्ष्मतन, ऐसा परमधाम, ऐसा सुखधाम, वैसा है नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं, तो हमें क्या रियलाइज करना है, अपने आप अपने को आत्मा देख, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ये रियलाइज करते रहो, मैं कैसे आत्मा सारे शरीर को चला रहा हूं, कैसे 7 एनर्जी परमात्मा को 7 गुणों का सागर, कितने दूर है हमसे, एक सोच की दूरी पर है ना, जैसे सोचा और बाबा तो यहां के बैठ जाता, सच्ची दिल बनाओ, बाबा यहां के बैठ गया, वो क्या सागर, अब सागर यहां के बैठ गया तो क्या होगा, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का सागर, रूम रूम में फील करो, ये कंबाइंड स्थिति का अनुभव करो, अब क्या होगा, अब ये जो इसके साथ जो फीलिंग आएगी ना, इससे पवित्रता की फीलिंग आएगी। पवित्रता क्या है? पवित्रता की परिभाषा क्या है? पवित्रता की परिभाषा है अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो, सत्य परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर, मतलब या कहो सिंपल कहो तो कंबाइंड स्थिति में अपने बाप से कंबाइंड होकर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो, सत्य माना आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, परमात्मा से कंबाइंड होकर क्या करो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे नौकर हो, चाहे कोई भी हो, बॉस हो, सबको क्या देखना, आत्मा देखना और आत्मिक रूप में व्यवहार करना। किसी भी ना किसी लौकिक से, ना किसी अलौकिक देहधारी से ना लगाव हो, ना झुकाव। लगाव रखना भी अपवित्रता है। किसी भी देहधारी से किस तरह झुकाव रखना भी अपवित्रता है। किसी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है। सिर्फ शिव बाबा के प्रभाव में आना है, बाकी किसी भी देहधारी के लौकिक चाहे अलौकिक, वो भी अपवित्रता है। और फिर किसी से टकराव रखना, किसने मुझे कुछ कहा उससे किनारा कर लेना, उसको छोड़ देना, उससे बात ना करना, उसको इंसल्ट करना, डिसरिगार्ड करना, ये भी अपवित्रता है। ठीक है? क्योंकि जब भी आप याद करने बैठोगे कौन याद आएगा? नहीं, जब भी याद, जिससे अगर किससे लगाव हुआ कौन याद आएगा? शिव बाबा याद आएगा कि वो याद आएगा? शिव बाबा अदृश्य है, मतलब एनर्जी है, दिखाई देने वाला याद आएगा ना? फिर तो नहीं, तो दिखाई देने वाला याद आएगा ना? तो लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाला याद आएगा। ठीक है? वही बुद्धि में आ जाएगा। तो इसलिए बुद्धि से बैठ के चीज का तरीका क्या है, चलते फिरते उठते बैठते अपने आप से बात करते रहो। किसी से लगाव तो नहीं? किसी बेटे से, बेटी से किसी से लगाव तो नहीं? पोता माताओं को होता है, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, बेटे से लगाव नहीं होता? बेटा तो अभी बड़ा हो गया, अपने अकड़ में रहता है। वो जो छोटे छोटे होते ना, चिंटू मिंटू, उनसे बुद्धि जाती है ना? नहीं होती? डॉली शोली ना, है ना, उनसे बुद्धि जाती है ना? तो वो लगते हैं ना, उसको सारा टाइम उसमें बुद्धि लगाए रखते। बाबा को इतना याद नहीं करते, उनको ज्यादा याद करते हैं। तो अभी बुद्धि सबसे निकालनी है। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव रखना भी अपवित्रता है। और इस ड्रामा में, संसार रूपी ड्रामा में, किसी भी व्यक्ति के पार्ट को देखकर क्या क्यों कब कैसे करना भी अपवित्रता है। ठीक है? तो जितना एबीसीडी का अभ्यास करते जाओगे उतना आपकी मन बुद्धि क्या होगी, बाबा से कंबाइंड होती जाएगी। और कंबाइंड होने से फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक सबका सत्य स्वरूप दिखाई देगा और सत्य स्वरूप में व्यवहार होगा। ना किसी से लगाव रहेगा, ये रहेगा ना, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हम सबका पिता परमात्मा, एक एक संबंध की अनुभूति बाबा से हो जाएगी, फिर किसी बुद्धि देहधारी में जाएगी नहीं। कोई भी संबंध की अनुभूति करनी है, पति के संबंध की अनुभूति, शिव बाबा पतियों का पति, और पत्नी की अनुभूति करनी है तो क्या करो, शिव बाबा पत्नी की पत्नी भी है ना? नहीं, पतियों का पति सुना होगा अभी तक, तो पत्नी का भी पार्ट शिव बाबा प्ले कर सकता है ना? सिर दर्द हो रहा हो तो बाबा मालिश भी करनी आती शिव बाबा को ना? बॉडी में दर्द हो तो बाबा हाथ पर दबा भी सकता है। मैं अनुभव करने का, सुनाने का समय नहीं है कि तुम्हें सुनाता नहीं, तो कैसे बाबा, कभी थक जाते हो ना तो बाबा कैसे मालिश भी करता है ना? क्योंकि मुझे बड़ी दादी कहती थी, बड़ी दादी मैंने दादी प्रकाशमणि कहती थी, गुप्ता जी ये जो ना बाबा है ना, ऐसे बाबा की फोटो, बाबा से मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे मैं तो आपसे बात करती हूँ। फिर कहती दादी, दादी कहती गुप्ता जी कभी कभी मैं ना, मैं बहुत थक जाती ना, बाबा मेरी मालिश कर देता है। है किसको अनुभव है बाबा से मालिश कराने का? हाथ उठाओ जिनको बाबा से मालिश कराने का अनुभव है। बहुत अच्छा। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। हार्ट का प्रोग्राम होता है ना, 7 दिन का प्रोग्राम होता है, तो हमें क्या करना होता था कि भी हम ना, एक तो पेशेंट जो होते हैं सीरियस होते हैं, हार्ट के पेशेंट, खांसी जुकाम के पेशेंट तो नहीं होते, आर्टरीज ब्लॉक है, हार्ट अटैक आ चुका है, डरे हुए होते हैं बहुत, तो उनको छात्र और पर्सन के रिश्तेदार भी डरे हुए होते हैं, जो पत्नी जो आती है, पति आता है, जो भी बीमार होता है वो भी डरे होते हैं, तो उनको भी बहुत सारी तकलीफें और भी होती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एसिडिटी, कमर का दर्द, अस्थमा, घुटने नहीं चलते, कमर नहीं चलती, गर्दन नहीं होती, सिर दर्द हो रहा होता है, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब कई बार क्या होता है, डॉक्टर मैं अकेला ही होता था, अब वो कई बार पेशेंट भी, 7 दिन लेक्चर भी लेना, क्लासेज भी कराना, अस्पताल में राउंड भी लेना, पेशेंट भी देखना, और ये यहाँ भी प्रोग्राम भी चल रहा था उसमें वो अटेंड करना, है ना? ऐसा होता ना हॉस्पिटल में, तो अभी सिंगल मैन डिपार्टमेंट होते हैं, एक ही डॉक्टर को सब कुछ करना पड़ता है। छोटा सा अस्पताल था ना हमारा, तो पहले अभी तक थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, बड़ा तो होगा ना उम्र के साथ ना, तो अभी बड़ा होता जाता है ना, तो अभी तो कुछ फैसिलिटीज होने लगी, तो पहले ऐसा भी नहीं होता था। तो क्या होता था, मैं सारा दिन, मैंने एक दिन सारा दिन काम किया, सारे लेक्चर भी हुए, राउंड भी लिया, लंच में जाके राउंड लेके आया है ना, सुबह से 1 बजे तक लेक्चर लिया, फिर राउंड लेके आया, फिर ऐसे सारा बाकी काम किया शाम तक, फिर शाम को फिर क्लासेस थी, सब कुछ किया, और फिर रात आई शाम आई, तो शाम के बाद पेशेंट की कंप्लेन आनी शुरू हो गई। मैं पहले पेशेंट के साथ में रहता था, अभी नहीं रहता हूँ, अभी तो कोई ना कोई डॉक्टर सेवा में आ जाता है, उस समय शुरू में कोई डॉक्टर नहीं आता था, तो कभी मैं इस कमरे से निकलूं तो दूसरी तरफ से बुलावा आ जाए, डॉक्टर साहब उधर तबियत खराब है, फिर इधर से निकलूं तो उधर बुलावा आ जाए, कमरे में वापस अपने बेडरूम तक आऊं नहीं तो दूसरा बुलाने आ जाए, तीसरा बुलाने आ जाए, चौथा बुलाने आ जाए। तो मैं सारी रात, मतलब 3:30 बज गए लगभग, और 3:20 हुए थे उस समय, 3:20 पे मैं अपने कमरे में आया, बेड पे बैठा, और उस समय मेरा सारा हाथ पैर दुख रहे थे, मतलब सिर भी दर्द हो रहा था, बॉडी भी सब कुछ दर्द हो रहा था, क्योंकि एक मिनट भी नहीं सोया था, बिस्तर पे ऐसे करके ही नहीं लेटा था, दिन भी सारा बिजी रहा था। तो मैंने 3:10, 3:20 पे मैंने कहा बाप, बेड पे ऐसे बैठ के बोला, पापा आज तो मेरे दम नहीं है बिल्कुल भी, सारा दिन मुझे काम करना है, अमृत वेला भी कराना है, फिर उसके बाद क्लास होगी, फिर उसके बाद वॉकिंग भी करानी है, सब कुछ कराना है, और मैं तो आज भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कुछ भी करने की, मैं तो रोम रोम में दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा था। तो फिर मेरे को तभी दादी की बात आई, दादी कहती है मैं बाबा मेरी मालिश करता है, मैंने कहा बाबा दादी की मालिश कर सकते, मेरी नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसे मन में सोचा ही था, ऐसे सोचा, बाबा की फोटो सामने थी, ऐसे जैसे ना मैं ऐसे बेड पे बैठा था, बाबा की फोटो ऐसे थी, तो जैसे ऐसे ही हुआ, अचानक क्या हुआ, एकदम से अचानक ही ऐसे कुछ अंदर होने लगा, पहले सिर में हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे, बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत क्विक होता है उसका काम ना, बहुत फास्ट होता है, घंटा नहीं मालिश करनी पड़ती उसको, 30 सेकंड में ऐसा हो गया, सारी बॉडी है ना ऐसे नीचे तक निकल गया एनर्जी ना, जैसे ऊपर से एनर्जी फ्लो शुरू हुआ और सारी बॉडी में नीचे तक, और 30 सेकंड में मेरा शरीर ऐसा हो गया, मतलब जैसे कुछ भी, जैसे मैं बिल्कुल फ्रेश 8 घंटे सो के उठा हूं, इतना फ्रेश हो गया मैं, और तभी किसी ने मतलब आके राजा फिर खटखटा दिया, अभी हमको फिर उस कमरे में तकलीफ हो रही है। फिर तो मैं बस उसको देखा, उसके बाद 3:30 बजे फिर ब्रश वरुश किया और करके फिर 4 बजे से योग था, सारा दिन काम किया, उस दिन भी रेस्ट नहीं किया, सारा दिन में कोई 1 सेकंड भी फील नहीं हुआ कि मैं थका हूं। तो ये बाबा की एनर्जी है, ठीक है, तो बाबा सब कुछ कर सकते, हर संबंध की अनुभूति बाबा से कर सकते हैं, तो जितना इसकी हम इसको करते जाएंगे तो पवित्रता की अनुभूति होती जाएगी, राइट, तो ये पवित्रता की शक्ति होती जाएगी। तो जब पवित्रता की शक्ति आई, अब पवित्रता की शक्ति आई तो क्या हुआ, अब पास्ट भूल जाएगा, हमने कहा ना वैसे भी जो हुआ अच्छा हुआ, तो पास्ट खत्म हो गया, और भविष्य भी जो होने वाला है सबसे अच्छा होने वाला है, तो ना पास्ट का चिंतन, शांति मन, पवित्रता ये हो गई, तो शांति मन, ना पास्ट का चिंतन, ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में बाप से कंबाइन होकर सोचना, कुछ भी सोचना है बाबा से कंबाइन होकर सोचो, अपने आप में सोचो, और बाप जैसे पवित्रता की बात मैंने की ना, पवित्रता भी अकेले आत्मा समझ के दूसरे को मत देखो, आत्मा नहीं देख पाओगे, अकेले आत्मा समझ के भी देखोगे तो भी आपको बुद्धि भ्रष्ट होगी, मतलब बुद्धि जाएगी, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने, बाबा से कंबाइन होकर देखो तो क्या होगा, हमें उसका सही स्वरूप समझ जाएगा, अनादि आदि स्वरूप दिखाई देगा, और फिर हम पवित्रता, वो पवित्र प्रैक्टिस होगी, लगाव झुकाव खत्म हो जाएगा, प्रभाव टकराव खत्म हो जाएगा, क्या क्यों कैसे खत्म हो जाएगी, और शांति में ना पास का चिंता, ना भविष्य की चिंता, बाबा से कंबाइन होकर सोचना, देखना, कुछ भी देखना है बाबा से कंबाइन होकर देखो, बाबा से कंबाइन होकर पढ़ो, बाबा से कंबाइन होकर सुनो, बाबा से कंबाइन होकर बोलो, बाबा से कंबाइन होकर खाओ, बाबा से कंबाइन होकर कुछ भी काम करो, घर में, ऑफिस में, कार्यस्थान पे, जहां भी जाना, सैर करनी, बाबा से कंबाइन होकर करो, इसको बोलते हैं शांति। सुना, शांति किसे कहते हैं, इसको कहते हैं शांति। मतलब 30 विचार जो आ रहे थे, 30 विचार में से 8 विचार मेरे आ रहे थे वर्तमान से, और 22 विचार आ रहे थे पास से या भविष्य से, तो 22 विचार खत्म हो गए, 8 विचार रह गए, तो 8 को शांति कहते हैं और 30 को अशांति कहते हैं, समझे, तो इतने कम विचार हो गए उसको बोलते हैं शांति। अब पास्ट का खत्म, भविष्य खत्म, मैं बाबा से कंबाइंड होकर अनुभव कर रहा हूं। फिर रूहानी प्यार किसे कहते हैं? अब शांति से रूहानी प्यार पैदा होता है। रूहानी प्यार माना बाबा से कंबाइंड होकर के, और फिर क्या करो, अपने इस सारे विश्व में हर आत्मा के हर रोल को देखते हुए, हर रोल को, कोई भी पार्ट है उसका, उसके रोल को देखते हुए, कैसे देखो, उसके रोल को महत्व देते हुए। महत्व माना, अब सपोज आपका घर है, आपका बेटा है, बेटी है, या पति है, या पत्नी है, कोई भी है, वो सो रहा है, अब क्या करना है उसको, अब वो सात बजे, आप उसको पांच बजे से जगा रहे हो, चार बजे से जगा रहे हो, अमृत वेला किया आपने, से जगा रहे हो, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा, उठते ही नहीं, तो क्या करोगे आप? छह बजे भी नहीं उठ रहा, सात बजे भी नहीं उठ रहा, क्या करो फिर आप? गुस्सा आएगा ना फिर आपको, नहीं है ना? क्या करेंगे? बाबा को कहेंगे, बाबा आप जगा दो इसको, ऐसे तो बाबा जगा देगा ऐसे। अच्छा नहीं, प्यार का मतलब क्या है? रूहानी प्यार का ये मतलब है कि उसके हर रोल को दे महत्व देते हुए, इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है, और बिना शर्त के आदर से उसको स्वीकार करो। ठीक है, आदर से स्वीकार करो, और फिर ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में रहकर उससे व्यवहार करो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि मैं 10 बार का ना, उठते क्यों नहीं हो? एक्चुअली हमारे घर में जैसे रामायण होती है, रामायण महाभारत होती है ना, वहां तो राम की सेना अलग है, रावण की सेना अलग है। राम की सेना में सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान है, और कोई है, सुग्रीव वगैरह है ना। इधर रावण की सेना में कौन कौन है? मेघनाथ, कुंभकर्ण, शूर्पणखा वगैरह सब है ना, ऐसे के उधर कई मंत्रा वगैरह भी है। तो यहां पर हमारे घर में क्या होता है, हमारे परिवार में या सब जगह क्या होता है, वो थोड़ी देर में देखो, अभी रावण, अभी तो राम का राम जैसा बोल रहा है, थोड़ी देर में रावण बन जाएगा, थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाएगा, थोड़ी देर में कुंभकर्ण बन जाएगा, वही राम है ना। अभी देखो आपका बेटा है या कोई भी है, संबंधी है, अभी देखो कितने प्यार से बात कर रहा है, राम जैसी बातें कर रहा है, थोड़ी देर में सोएगा तो कुंभकर्ण जैसा बन जाएगा, जगाओ जगेगा नहीं, कभी तो गुस्सा मेघनाथ की तरह गुस्सा करना शुरू कर देगा। अब क्या करोगे? अगर आपने उसको डांट लगाई, उल्टा सीधा बोला, तो क्या होगा? वो फिर आपसे बात नहीं करेगा या बात नहीं करेगी। उसको कभी ज्ञान सुनो ना, तो दूर की बात है, आप भूल ही जाओ, आप उसमें उसके महत्व दो, उसको नींद आ रही हो, कोई बात नहीं, सोने दो। प्यार से स्वीकार, आदर से स्वीकार करो, बिना शर्त के, कंडीशन नहीं, तू उठेगा तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे, मेरा कहना मानेगा तो ऐसा, नहीं जैसा भी है, फिर उसको कभी प्यार से जब अच्छे मूड में हो सिखाओ, है ना, प्यार से बोलो, स्वीकार करके। हो सकता है सिर दर्द हो रहा हो उसको, हो सकता है शायद आप सोया ना हो या सोई ना हो, कोई तकलीफ हो उसको, और आप उसको डांट डांट मारे जा रहे हो, तो क्या होगा? पर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं से फिर के अंदर रह के व्यवहार करो, ये नहीं कि फिर ईश्वरीय नियम मर्यादा तोड़ के मुंह में आके सब कुछ उसको। तो ये है रूहानी प्यार, मतलब ऐसा प्यार जब आपका सबके प्रति हो जाएगा, सारे विश्व में हर आत्मा के प्रति, किसने कुछ भी किया हो, कुछ भी करता हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम घरों में होती है ना, प्रवृत्ति मार्ग वाले ना ज्यादातर, तो सभी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं ना कि नहीं, तो घरों में क्या यही तो प्रॉब्लम आती है, तो रूहानी प्यार क्या खत्म हो जाता है? कोई आपस में प्यार रहता है क्या? प्यार रहता ही नहीं है, झगड़े ही होते रहते हैं। तो ये जब हमें स्थिति हो, तो इसको बोलते हैं रूहानी प्यार। और जब आप सबको स्वीकार कर लेंगे, तो अतिंद्र सुख के अनुभव, तब आप फील करेंगे आप दुनिया से ऊपर चले गए, तब आपको फील होगा कि आप बाबा के पास चले गए, बाबा की गोद में चले गए। अच्छी सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, सूक्ष्म वतन है शिव बाबा का दिल। ठीक है, बाबा का दिल तक ही सूक्ष्म वतन है। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चा है जो बाबा के दिल में रहता है, वो कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने अपने, और सूक्ष्म शरीर क्या है? ये जो आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्ति है ना, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों के तीनों सूक्ष्म, ये सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म शरीर बनता है। जब मेरी बुद्धि सत्वप्रधान बन गई, पावन सत्वप्रधान बन गई, मन पावन सत्वप्रधान बन गया, संस्कार पावन सत्वप्रधान बन गए, तो मेरा शरीर क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर बन गया। और सूक्ष्म वतन क्या? बाबा की दिल। और ऐसा बच्चा जिसकी दिल सच्ची बन गई है, जिसकी मन बुद्धि संस्कार उसने पावन बना लिया, सत्वप्रधान बनाया, वो बच्चा बाबा की गोद में जाके बैठ सकता है। ठीक है, राइट। तो सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं, वो स्थान है जहां पर देवताओं का और फरिश्तों का, मतलब मुझे फरिश्ता बन के जाना पड़े, फरिश्ता माना जिसके दिल में शिव बाबा हो, बाबा हो, और जिसकी मन बुद्धि संस्कार पावन पवित्र बन गई हो, सातों गुणों से भरपूर कर लिए उसने, तो उसे कहते हैं फरिश्ता। और ऐसा बच्चा ही क्या हो जाएगा, जाके सूक्ष्म मतलब माना बाबा के दिल पर जाके बैठ सकता है। और बाबा के दिल में उसका कौन सा स्वरूप है, एक माँ के दिल में कौन सा स्वरूप होता है बच्चे का, जब वो छोटा सा था, प्यारा सा था, मुस्कुराता था, है ना, और साथ में खेलता था, है ना, कौन सा, एक 35 साल का होगा उसका बेटा अभी, तो भी उसको देख के क्या याद आती है माँ को, बोलो, माँ तो यहाँ बैठी ना यहाँ पे, क्या याद आती, याद आती है, तो उसका उसका जो बच्चे का रूप था ना वही दिखाई देता है, इतना प्यारा सा मेरा बेटा ऐसे, इतना भले अभी कैसा भी है, है ना, है ना, अभी दाढ़ी मूछ वाला है, अभी वो उसको नहीं देखती, उसमें देखती वही वाला बच्चा देखती, तो ऐसा हमको समझना है, ठीक है। तो ये अभ्यास करो तो सूक्ष्म वतन दिल तक नशीन बनना, बाबा का दिल तक नशीन बनना ही क्या है, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, बाबा का दिल तख्त है ना, जहां पर बाबा फिर हमें अनुभव कराता है, बच्चे जैसे माँ बोलती ना गोदी में लेके बड़े को भी, तो बेटे तू कितना प्यारा है, तू कितना बचपन में ऐसे करता था, तू ऐसे करता था, तू ऐसे ऐसे करता था, अच्छा मम्मी मैं ऐसे करता था, ऐसे करता था, उसको याद नहीं होता कि तू, वो बोलता तू ऐसे, अच्छा ऐसे, तो बाबा भी हमको क्या करता है गोदी में लेके, तू ऐसे था, तू ऐसे है, तुझे तो ये बनना है वापस ना, तू ऐसे तेरा मुकुट होता था हमेशा, रतन जड़ित मुकुट था, इतना बड़ा तेरा ताज था, इतना लाइट का ताज था, इतना तू सुंदर था, सर्वगुण संपन्न था, सोलह कला संपूर्ण था, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधर्म, तुम तो कुछ आंख भी दिखाते नहीं थे, तुम कैसे बन गए, अभी तुझे वापस बन जाए। माँ बच्चे को सिखाती है ना, ऐसे ही बाबा हमको अपनी गोद में लेके, माँ बाप है ना हमारा, ब्रह्मा बाबा माँ है, शिव बाबा बाप है, सूक्ष्म तन माना यहाँ बैठा है ब्रह्मा, उसके तन में शिव बाबा के बैठा है सूक्ष्म शरीर में, तो ऐसे बाप दादा की गोद में। अब आज क्लास कराने का मेरा यही मैंने टॉपिक इसलिए चुना था ताकि आप लोगों को सूक्ष्म तन के बारे में तो क्लैरिटी हो जाए, है ना, ये सूक्ष्म तन क्या बनाते हैं, हम अपना ही सूक्ष्म तन बना लेते हैं, है ना, वैसे सूक्ष्म तन नहीं है, है ना, ये देह भान से बाहर निकलो तो कहां पहुंच गए, सूक्ष्म वतन, है ना, कहां पे सूक्ष्म वतन, है ना, इस देह मान से बाहर निकले, देह के संबंध से बाहर निकले, देह के स्वभाव संस्कार से बाहर निकले, देह के पदार्थों से बाहर निकले, बुद्धि वहां से हटाई, दिल में बाबा को बिठाया, बाबा आके बैठ गया, और कहां अभी इंजन लग गया, डबल इंजन लग गया, कहां पहुंच गए, ट्रिपल इंजन हो गया, बल्कि ना बाबा हमेशा अकेला नहीं आता है, ब्रह्मा बाबा को साथ लेके आता है, तो दोनों आके बैठ गए, तीन हो गए ना, ट्रिपल इंजन हो गया, कहां पहुंच गए, कितने देर में पहुंचे, एक दिन में, है ना, एक सेकंड में पहुंच गए, और बाबा की गोद में जाके फिर बाबा से बात करते हैं, बाबा पापा प्यार करता है, बाबा के दिल में जाके बैठ जाते हैं, ना, ऐसे जो अपने दिल में बाबा को रखेगा, दिल तक नशीन माना, बाबा की जो मुरली है ना, सारा दिन मुरली का, एक्चुअली राजयोग कुछ और नहीं है, बाबा की मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, यही राजयोग, मनन करते करते चिंतन कर, चिंतन में गहराई में जाओ, मंथन माना चिंतन माना मुझे बनना है ऐसा, मंथन माना कैसे बनना है, बाबा से पूछो, बाबा कैसे बनूं, आपने तो ऐसा कह दिया आज मुरली में सर्वंश त्यागी बन जाओ, मैं कैसे सर्वंश त्यागी बनूं, मेरी तो यहां एक रस्सी इधर को है, 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 यहां से सिर से भी पकड़ा हुआ है, यहां से भी पकड़ा हुआ है ना, मैं क्या करूं, सर्वंश त्यागी कैसे बनूं, तो बाबा कहेगा बच्चे ऐसे मंथन, मक्खन देगा आपको निकाल के मुरली में से, बच्चे तुम ऐसे करो, बच्चे मैं माँ मैं बाबा मैं तो मैं को इतना काम करना पड़ता है, मैं सारे घर में बच्चों के कपड़े भी धोती हूँ, सबके काम करने पड़ते हैं, इतना काम करना है, इतना करना, सेंटर पे जाता हूँ सब रोक देते हैं मेरे को, जाने नहीं देते, क्या करूं मैं, तो बाबा बाबा कहेंगे बच्चे तुम ऐसे करो, बाबा सोल्यूशन दे, मक्खन निकाल के देगा, वो सिमरन माना जो मक्खन निकला उसको सारा दिन कार्य करते समय लगाते रहो, काम में खाते रहो मक्खन, सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब कार्य करते हुए उसको बार बार बुद्धि में रखो, उसको यूज करो, फिर नए संस्कार बन जाएंगे, नए संस्कार बनेंगे तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड होएगा, नए संस्कार, अब ये बन गए ब्राह्मणों के संस्कार, ये बने धीरे धीरे और डिटैच होंगे तो फरिश्ता का संस्कार, है ना, पवित्र होता जाएगा फरिश्ता का, फिर और बने तो देवता ही संस्कार, जितने पवित्रता सातों गुण बढ़ते जाएंगे संस्कारों की और इंप्रूवमेंट होती जाएगी, तो पुराने संस्कार मर्ज हो जाएंगे, नए संस्कार इमर्ज हो जाएंगे,
और जितना हमारा फिर बुद्धि मन पवित्र होती जाएगी उतना हम क्या हो जाएंगे, चलते फिरते उठते बैठते क्या महसूस करेंगे कि हम बाबा के दिल में, हम मगन रहेंगे, मगन तो अतिंद्रिय सुख और फिर आनंद, आनंद माना बाबा के प्यार में लवलीन रहना, और फिर शक्तियां अपने आप आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास करेंगे तो हम चलते बस बाबा की मुरली को अपना हथियार बना लो और शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, पवित्रता बढ़ाओ और सत्संग, एक बाबा और मुरली के अलावा सब छोड़ दो, कोई हठयोग करना बंद कर दो। कई लोग लगाते हैं ना ऐसे ऐसे ये मुद्रा लगा के बैठते हैं कई लोग, है ना, कई लोग क्या करते हैं लंबे लंबे सांस लेके करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शवासन करते हैं, सब छोड़ दो। एक बाबा जो कहते हैं सिर्फ वही करो, एक बाबा से सुनो, किसी देदारी की मत सुनो, राइट। एक बाबा, बाबा और बाबा की मुरली सत्य है, बाकी सब असत्य है। और अपने बड़े जो टीचर बहने हैं उनसे आप सुनो, रोज सेंटर पे आके मुरली सुनो, कोई सेलिब्रेशन चाहिए तो उनसे लो, क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया हुआ है ना, राइट। अपने कई बार हमारी मन बुद्धि काम नहीं करती, जहां हमारा लगाव होता है वो काम नहीं करती है, टीचरों से पूछो, जो बहनों से पूछो, वो आपको वो बाबा से पूछ के आपको सही गाइडेंस देंगे। ठीक है, पक्का बन गए दिल तक नशीन, है ना, टाइम तो पूरा हो गया, ज्यादा ही हो गया है ना, तो इसलिए आपको विस्तार में ना जाके सार रूप में ये पक्का करना कि दिल तक नशीन वही बनेगा बाबा का जो सदा बाबा का क्या होगा, हाँ, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार होगा। आज्ञाकारी मना बाबा की मुरली को, बाबा और मुरली ये दो सत्य हैं, इनको सदा ही सारा दिन क्या करेगा, मनन करेगा, चिंतन मंथन सिमरन करेगा, तो वो अपने आप कहां पहुंच जाएगा, सूक्ष्म वतन माना बाबा के दिल तक पे बैठ जाएगा, बाबा की गोद में रहेगा और वो फरिश्ता बन जाएगा। ओम शांति। दो मिनट बाबा भैया
तालियां बजाकर धन्यवाद करते हैं। अवश्य आप
समझ में आया कि ऊपर से क्या होगा, जिसको नींद आई वो हाथ उठाओ।
तो अभी हम याद में बैठेंगे और शाम को 5 बजे यहीं पर आएंगे, 5 से 5:30 योग और 5:30 बजे फिर क्लास होगी। ओम शांति।